ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा का कथन। कांग्रेस उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का को दी गई कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह का इस्तीफा स्वीकृत। प्रदेश प्रमुख द्वारा नए मुख्यमंत्री के दावे पेश करने का आह्वान। गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों का फॉलोअप कराने पर दोबारा रेफरर की नहीं होगी आवश्यकता। सुप्रीम कोर्ट में आज से सभी प्रकार की रीट याचिकाएं दर्ज होने शुरू। और संभावित घोटाले के शिकार हुए 80 दक्षिण कोरियाई नागरिक कंबोडिया में लापता। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने पार्टी के उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का को कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी मुख्यालय सानेपा में आज हुई केंद्रीय समिति की बैठक में सभापति देउवा ने उपसभापति खड़का को कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक को संबोधित करते हुए सभापति देउवा ने बीते भादर 23 और 24 गते जेनजेड आंदोलन में जान गंवाए हुए युवाओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। इस बात का जिक्र करते हुए कि जेनजेड विद्रोह का दूसरा दिन यानी भाद्र 24 गते नेपाल के एक भयावह दिन के रूप में लिपिबद्ध होगा, उन्होंने कहा कि उस दिन की घटना ने सभी को मर्माहत किया है। उन्होंने कहा कि देश में संकट आने पर नेपाली कांग्रेस ने हमेशा नेतृत्वदायी भूमिका निभाई है, इसलिए मौजूदा दौर में भी सभी पार्टियों के बीच सहमति ढूंढकर देश के निकास के लिए कांग्रेस पहल करेगी। ये चर्चा करते हुए कि नेपाल का संविधान जोखिम में है, उन्होंने कहा कि जन निर्वाचित सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा विघटित कर भले ही नए चुनावों की तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन स्वतंत्र निष्पक्ष और भयरहित चुनाव का वातावरण नहीं बन सका है। उन्होंने दलों के बीच आपसी विमर्श और सहकार्य किए जाने की बात पर जोर दिया। साथ ही सभापति देउवा ने यह भी कहा कि शांति सुरक्षा की स्थिति सामान्य बनाकर शांतिपूर्ण निष्पक्ष और भयरहित वातावरण में चुनावों में सबके सहभागी हो सकने की अवस्था निर्माण करने का दायित्व सरकार का है। सभापति देउवा के संबोधन के बाद नेपाली कांग्रेस केंद्रीय समिति की अगली बैठक परसों आश्विन 30 गते के लिए निर्धारित करते हुए स्थगित हुई थी। मध्य प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी ने मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के त्यागपत्र को स्वीकृत करते हुए नए मुख्यमंत्री के लिए दावा पेश करने का आह्वान किया है। प्रदेश प्रमुख भंडारी ने प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले दो या दो से अधिक दलों के समर्थन में बहुमत प्राप्त कर सकने वाले प्रदेश सभा सदस्य को कल अपराह्न 4 बजे तक मुख्यमंत्री पद पर दावा पेश करने के लिए आह्वान किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश सभा की आज की बैठक में मुख्यमंत्री सिंह के विश्वास मत लेने की कार्यसूची थी, लेकिन विश्वास मत प्राप्त होने की स्थिति नहीं दिखाई देने पर उन्होंने रोस्टम से ही नई सरकार निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री सिंह विक्रम संवत 2081 जेठ 25 गते को मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का नाम प्रयोग करके चंदा संकलन करने या ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली गतिविधि पाए जाने पर ऐसे काम को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान के जरिए कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और प्रधानमंत्री कार्यालय का हवाला देते हुए विभिन्न परियोजनाओं, कोष और सामाजिक कार्य के नाम पर चंदा मांगने की सूचना के प्रति ध्यानाकृष्ट होने की बात कही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता रविलाल शर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किसी भी तरह का चंदा या सहयोग संकलन के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं शहरी विकास मंत्री कुलमान घिसिंग ने कहा है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आवश्यक अध्ययन करके ही बस्ती का विकास करना जरूरी है। ललितपुर में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल को हर साल आपदा का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसके लिए प्रभावी प्रबंधन और सूचना प्रणाली आवश्यक है। मंत्री घिसिंग ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और नदी किनारों पर हुए अव्यवस्थित बस्ती विकास ने आपदा प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, इसलिए अब ये अध्ययन करके प्रबंधन करना जरूरी है कि किस स्थान पर बस्ती बनाई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि आपदा प्रबंधन पर सामाजिक पक्ष से भी ध्यान देना आवश्यक है। उनका कहना था कि यदि नेपाल की लगभग 30 नदी क्षेत्र का जल प्रबंधन किया जा सके तो इससे सिंचाई और पेयजल प्रबंधन को आसान बनाने तथा बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। नेकपा एमाले की 10वीं केंद्रीय समिति की बैठक कल के लिए बुलाई गई है। एमाले के प्रचार विभाग प्रमुख राजेंद्र गौतम के अनुसार बैठक कल सुबह 11 बजे ललितपुर के जावला खेल में बुलाई गई है। उनके अनुसार बैठक की कार्यसूची में पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमों को शामिल करने वाला राजनीतिक प्रतिवेदन, राजनीतिक प्रस्ताव और विभिन्न विषय पर चर्चा शामिल है। प्रमुख गौतम ने बताया कि बैठक में आसन्न पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन के बारे में भी चर्चा होगी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। जंजेड आंदोलन के दौरान हुई आगजनी के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज से रीट याचिकाएं दर्ज होना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोरला ने बताया कि अदालत में सभी प्रकार की रीट याचिकाएं दर्ज करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया है कि मुल्की देवानी कार्यविधि संहिता 2074 की धारा 157 तथा मुल्की फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 की धारा 73, 137 और 155 के तहत याचिकाओं का पंजीकरण और सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की पिछले 26 गते रविवार को हुई पूर्ण बैठक में आज से नए मामले दर्ज करना शुरू करने का निर्णय किया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सूचित किया है कि अदालत की नियमित अन्य सेवाओं के प्रवाह की अगली सूचना न आने तक मियाद, हद मियाद और तारीख नहीं गुजरेगी। आगजनी की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट की नियमित सेवाएं प्रभावित हुई थी, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई अदालत परिसर में टेंट लगाकर संचालित की गई थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोरला ने बताया कि सर्वोच्च अदालत में जेएनजेड आंदोलन के दमन के विरुद्ध और प्रतिनिधि सभा विघटन तथा अंतरिम सरकार गठन के विरुद्ध रीट याचिकाएं दायर हुई हैं। प्रवक्ता कोरला ने बताया कि ये रीट याचिकाएं अभी अध्ययन के दौर में हैं और अध्ययन के बाद शेष प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने कहा है कि कड़े ढंग के रोग के लिए प्रथम सेवा बिंदु से एक बार रेफर किए जा चुकने के बाद फॉलो अप के लिए फिर से रेफर किए जाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने बीमित व्यक्ति के प्रथम सेवा बिंदु की सेवा अपर्याप्त होने पर रेफरल केंद्र में जाने पर फिर से रेफर न करने की व्यवस्था की है। बता दें कि कड़े रोग का तात्पर्य कैंसर, दिल, किडनी, हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरी, सिकल सेल एनीमिया, अल्जाइमर जैसी बीमारियों से हैं। इसी तरह गरीबी परिचय पत्र प्राप्त परिवार, अति अशक्त, अपांग, कुष्ठ रोगी, एचआईवी संक्रमित, जटिल क्षय रोग और 70 की उम्र के ज्येष्ठ नागरिक के लिए भी एक बार रेफर होने के बाद दोबारा रेफर की जरूरत न होने का निर्णय किया गया है। ये जानकारी बोर्ड के उप सचिव पुण्यमाया गुरागाई ने दी। नेपाल पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने विदेश में रह रहे नेपाली नागरिकों के लिए मतदान की व्यवस्था करने का आग्रह करते हुए निर्वाचन आयोग को 9 बिंदुओं वाली नीति सिफारिश सौंपी है। विदेश स्थित नेपाली नागरिकों के लिए बाह्य मतदान की व्यवस्था, आगामी 2026 का निर्वाचन और उसके बाद के संभावित उपाय शीर्षक वाली ये नीति सिफारिश एनपीआई ने निर्वाचन आयोग के आयुक्त जनक तुलाधार, अन्य पदाधिकारियों और सचिव माधव पंत को सौंपी है। एनपीआई ने विश्व के कई देशों द्वारा विभिन्न विधियों का प्रयोग कर विदेश में रहने वाले नागरिकों को मतदान का अधिकार दिए जाने का उल्लेख करते हुए विदेश में रह रहे नेपालियों के लिए मिश्रित प्रकार की बाह्य मतदान विधि का सुझाव दिया है। परसा और बारा में फैले हैजा की महामारी को नियंत्रित करने के लिए नेपाल सरकार द्वारा चलाए गए टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है। परसा जिले में 2 दिन के भीतर 46,896 लोगों को हैजा के विरुद्ध टीका लगाया गया है। यह अभियान परसा के 14 और बारा के 6 स्थानीय तहों में संचालित है। परसा में आश्विन 26 से कार्तिक 2 गति तक यह अभियान चलेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नकली रोजगार और संभावित ठगी के मामले के शिकार बने 80 दक्षिण कोरियाई नागरिक कंबोडिया में लापता हो गए हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार जनवरी 2025 से अगस्त तक 330 दक्षिण कोरियाई नागरिक कंबोडिया पहुंचे थे। इनमें से कुछ व्यक्तियों के लापता होने या उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ रोके जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से अब तक लगभग 80 लोगों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया है कि घटना से संबंधित आंकड़ों में विसंगति न हो इसके लिए गृह मंत्रालय और पुलिस डेटा के साथ क्रॉस जांच कर रही है। सन 2023 में कंबोडिया में दक्षिण कोरियाई लोगों से जुड़े अपहरण या अवैध हिरासत की लगभग 21 घटनाएं दर्ज की गई थी, लेकिन पिछले साल ये संख्या तेजी से बढ़कर 221 हो गई और इस साल अगस्त तक इनमें 15 गुना तक की वृद्धि हुई है। जैसा कि सांसद यून हू डुक ने संसदीय सुनवाई में बताया है, सरकार के अनुसार कई दक्षिण कोरियाई नागरिक उच्च वेतन के लालच में आकर झूठे रोजगार प्रस्तावों में फंस गए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देववा का कथन। कांग्रेस उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का को दी गई कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह का इस्तीफा स्वीकृत। प्रदेश प्रमुख द्वारा नए मुख्यमंत्री के दावे पेश करने का आह्वान। गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों का फॉलोअप कराने पर दोबारा रेफरल की नहीं होगी आवश्यकता। सुप्रीम कोर्ट में आज से सभी प्रकार की रीट याचिकाएं दर्ज होने शुरू। और संभावित के शिकार हुए 80 दक्षिण कोरियाई नागरिक कंबोडिया में लापता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।